सबका स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। चौथा अध्याय जहां दिव्य ज्ञान की व्याख्या प्रारंभ की है भगवान ने, और अर्जुन ने अपने प्रश्न के द्वारा भगवान के श्रीमुख से भगवान और अर्जुन में जो घनिष्ठ मित्रता है, सख्य रस है, उसको उजागर किया है। तो हमारे पिछले कुछ सिटिंग्स से हम चर्चा कर रहे थे कृष्ण और अर्जुन की परफेक्ट फ्रेंडशिप, और पिछले बुधवार बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी अर्जुन, और बहुनी में का एक अनुवाद हमारे आचार्य करते हैं, केवल अनेक नहीं असंख्य, कोई संख्या नहीं जिसकी, असंख्य जन्म भगवान के अर्जुन के हमारे हो चुके। और भगवान कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मुझे पूर्ण स्मृति है उन सब की। तो ये मुख्य मुद्दा था कि भगवान अनेक जन्मों के पश्चात भी विस्मृति के शिकार नहीं होते, और हम एक जन्म और उस जन्म के अंदर काल के प्रभाव के वजह से विस्मृति के शिकार हर पग पर हो जाते हैं। तो पिछली बार हमने एक महत्वपूर्ण मुद्दा लिया था कि हमारी जो बुद्धि है, जिसका कर्तव्य है हमारे मन को नियंत्रण में रखना, और योग की शुरुआत होती है मन पर नियंत्रण लाने से, और मन पर नियंत्रण फिर बुद्धि से आ सकता है। माइंड कंट्रोल कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली विथ स्टडी इंटेलिजेंस। और स्थिर बुद्धि का एक बहुत प्रमुख लक्षण है स्मृति। दूसरे अध्याय में भगवान ने इस बुद्धि और स्मृति का संबंध किया है, बहुत सुंदर तरीके से समझा है। क्रोधात भवति सम्मूढ़ा, सम्मूढ़ स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जब व्यक्ति काम वासना के वजह से आसक्त होता है, उसके वजह से फिर जब आसक्ति पूरी नहीं होती, जब क्रोधित होता है, तो क्रोध की अवस्था में क्रोधात भवति सम्मूढ़, वो भ्रमित हो जाता है। सम्मूढ़ का अर्थ है भ्रमित हो जाना, तो क्रोध के वजह से भ्रमित होता है, और उसके वजह से स्मृति भ्रमसात, उसकी जो स्मृति है मेमोरी, यहां पर ये जो पॉइंट आ रहा है मेमोरी, स्मृति उसकी धीरे धीरे चली जाती है। इसलिए हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति आवेश में, ताव में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है, तो भूल जाता है कि उसके मुख से क्या वचन निकल रहे हैं और सामने कौन है, ये भी भूल जाता है उस समय के लिए। टेम्पररी मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलते हैं जिसको, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्रोध के वजह से। परंतु ये आज का जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाशो, कि स्मृति चली जाती है अर्थात फिर बुद्धि वो हताश हो जाती, बुद्धि फिर कुछ काम नहीं कर सकती। जैसे कि हमने उदाहरण पिछली बार लिया था, आग में हाथ न डालना, ये बुद्धि का कार्य है। दिखने में आग सुंदर दिखती है, हो सकता है कि मन हमारी इंद्रियों को कहे कि आग जो इतनी सुंदर दिख रही जाकर स्पर्श कर देखो। उस समय बुद्धि कहती है नहीं। तो बुद्धि नहीं कैसे कह सकती है? क्योंकि बुद्धि अपने अंदर सहारा लेती है स्मृति शक्ति का। बुद्धि स्मृति शक्ति का सहारा लेती है। तो जो भी हम आदान प्रदान करते हैं इस भौतिक संसार में बुद्धि के द्वारा, तो बुद्धि पहले पूरा इंफॉर्मेशन मेमोरी बैंक से इकट्ठा करती है कि यही स्थिति में पिछली बार क्या हुआ था। तो तुरंत मेमोरी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रदान करके, पिछली बार चटका लगा था, बुद्धि तुरंत बोलती चटका लगा था, दूर हटो। तो बुद्धि के पास शक्ति सपोर्ट सिस्टम कहां से आ रहा है? मेमोरी, स्मृति। जैसे हम रोज पानी पीते हैं तो ये भी हमारे मेमोरी में स्टोर्ड है कि ये पानी हमारी प्यास बुझाता है। हम खाना खाते हैं और उसमें भी जो खाते हैं, जो कुछ हमें पसंद होता है ना पसंद होता है, वो सब बुद्धि बार बार इंफॉर्मेशन देती रहती है। चाहे आंखें बंद हो, चाहे अंधा कोई व्यक्ति हो, उसके जिह्वा पर जैसे ही कुछ डाल दो, अंदर से मेमोरी याद दिलाती है कि तूने 5 साल पहले ये आइटम खाया था, ये वही आइटम है। तो यहां पर पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्मृति शक्ति कितनी शक्तिशाली है। अब प्रश्न है कि इस स्मृति को, मेमोरी को शक्ति कौन दे रहा है? परमात्मा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम, अपोहनम अर्थात विस्मृति। तो भगवान कह रहे हैं 15वें अध्याय में कि मैं स्रोत हूं स्मृति और विस्मृति दोनों का। क्योंकि हम लोग सब इस भौतिक संसार में आए भगवान को भूलने के लिए। जैसे बच्चे पार्टी में जाते हैं मां बाप को भूलने के लिए, एक कारण वो होता है कि पक जाते हैं घर में रह रह के मां बाप के साथ, इसलिए बाहर निकलते हैं। तो आप देखोगे कि नौजवान जो होते हैं वो मां बाप की चर्चा नहीं करते, और वो भी मां बाप की चर्चा अगर करते भी हैं तो किस हिसाब से करते हैं? भुलाने के हिसाब से। तो हम लोग वैसे ही बागी, बगावत किए हुए यहां पर इस भौतिक संसार में भगवान की विस्मृति का अनुभव करते हुए, इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि उसका भी स्रोत मैं ही हूं, मुझे ही वो विस्मृति देनी होगी, नहीं तो तुम्हारे पास तो शक्ति नहीं है, मुझे भूलने की भी शक्ति नहीं, क्योंकि मैं सब जगह व्याप्त हूं। तो भगवान सब जगह व्याप्त हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, तो सोचिए उसके बावजूद हम भगवान को भूले हुए, तो कितना बड़ा पराक्रम हमने किया। फिर हमने आत्मा एवं परमात्मा, ये उपनिषद का उदाहरण है, एक डाली पर दो पंछी, एक है परमात्मा एक है आत्मा, परंतु जो आत्मा है वो परमात्मा से विमुख होकर बैठा हुआ है, रूठा हुआ बैठा हुआ है, मुझे नहीं देखना आपकी ओर, क्यों आपकी ओर देखूंगा तो सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। हमारे ब्रह्मचारी हंस रहे हैं, वो भी सर्विस इंचार्ज के साथ ऐसे ही बैठे रहते हैं। इसे एक ही डाली में दो पंछी, एक ही आश्रम में दो ब्रह्मचारी, एक इधर। सर्विस इंचार्ज की ओर देख लिया तो सेवा में लगा देंगे। तो ये उदाहरण उपनिषद का है जहां पर हम इतने निकट हैं, जैसे कि देखो ये कितने निकट हैं दोनों पक्षी, वैसे हम परमात्मा के इतने निकट हैं। तो अब ये सब कुछ समझाने के पश्चात, जो हमने पिछली बार प्रभुपाद का ये बहुत ही स्पेशल एक मुद्दा लिया था कि प्रोग्रेस क्या है, मनुष्य जीवन की प्रगति क्या है, व्हेन कंडीशन लिविंग एंटिटी इज टायर्ड ऑफ चेंजिंग बॉडीज। पिछली बार हमने शरीर हमारा जो परिवर्तनशील है उसकी व्याख्या की थी विस्तार से। तो ये शुरुआत है हमारे मनुष्य जीवन की प्रगति की। जब हम थक जाएं, मुझे भगवान और शरीर नहीं चाहिए, वो है शुरुआत केवल किसकी, प्रगति की। और जब तक हम शरीर से और शरीरों से आसक्त रहेंगे, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहेगा। तो अब ये सब कुछ समझने के पश्चात कि भगवान इतने जन्म, असंख्य जन्म लिए, अर्जुन इतने असंख्य जन्म लिए, भगवान की स्मृति बनी रही क्यों और कैसे, तो ये समझने के लिए अब हम प्रारंभ करेंगे आज का श्लोक। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। श्री भगवान ने कहा, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो ये श्लोक ऐसे ऐसे मुद्दों को सामने प्रस्तुत कर रहा है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की शंका यदि रह जाए व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री कृष्ण को लेकर, तो यह श्लोक क्लैरिफाई कर रहा है। तो यदि उपस्थित भक्त हमारे मनों में भगवान श्री कृष्ण को लेके यदि कुछ शंकाएं हैं, तो हम प्रयास करेंगे आज के श्लोक को लेकर उन शंकाओं को दूर करना। कैसे? तो आज के हमारे चर्चा के विषय, पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, भगवान में विरोधाभास को कैसे समझें। आज के श्लोक में और पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ ऐसे वाक्य कहे हैं जिनके अंदर विरोधाभास दिखता है, कॉन्ट्रडिक्शन, तो उसे कैसे समझें, भगवान की अंतरंगा शक्ति का महत्व क्या है, पहले बताएंगे अंतरंगा शक्ति क्या है, फिर बताएंगे उसका महत्व क्या है। घबराइए मत। आत्म मायाया शब्द की व्याख्या, भगवान ने अंत में आत्म मायाया ये शब्द इस्तेमाल किया। तो पिछले श्लोक से संबंध, पिछले श्लोक में भगवान के असंख्य जन्मों की पूर्ण स्मृति का वर्णन किया गया। तो मन में ये प्रश्न उठ जाता है कि कैसे संभव है असंख्य जन और पूर्ण स्मृति हर एक जन, और न केवल भगवान के बल्कि अर्जुन के भी असंख्य जन्म, और अर्जुन ने क्या क्या किया उसकी भी पूर्ण स्मृति, न केवल अर्जुन बल्कि जितने बद्ध जीव हैं, जितने जीव हैं, उन सब के जितने असंख्य जन्म आज तक हुए हैं और आगे होंगे, उन सब की पूर्ण स्मृति भगवान को है। तो आज के श्लोक में भगवान के ऐसे विलक्षणता का कारण वो समझाया गया है। हमारे जो आचार्य हैं उनके तात्पर्यों के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे संभव है। हालांकि समझ कभी नहीं पाएंगे, परंतु प्रयास करेंगे। तो आज के श्लोक में यदि आप गौर करें तो ये तीन भगवान के गुण या भगवान के पद बताए गए। भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है, और भगवान क्या है? भूतानाम ईश्वरः। भूतानाम यहां पर भूत प्रेत नहीं, संस्कृत में जीव भूत, हम जीवात्माओं को भूतानाम कहा गया। अब देखिए, भगवान पिछले श्लोक में कहें कि उन्होंने बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, कि उन्होंने इतने जन्म लिए, और इसी अध्याय में आगे श्लोक आने वाला है कौन सा, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कह दिया कि इतने सारे जन्म उन्होंने लिए, आगे श्लोक में भगवान कहने वाले हैं कि कैसे उनका जन्म होता है, परंतु आज के श्लोक में भगवान कहते हैं अजह। अजह का अर्थ है मैं जन्मा हूं, मेरा कोई जन्म नहीं होता। तो ये कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, क्या भगवान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं हो रहा यहां, कि पिछले श्लोक से अब भूल गए कि अभी पिछले श्लोक में क्या बोला था? नहीं, क्योंकि इसमें जो भगवान की विविधता छुपी है, वैरायटी भगवान के विरोधाभास में, वो हमें जानना है। तो भगवान कह रहे हैं कि न केवल मैं अजह, न केवल मैं अजन्मा हूं, बल्कि अव्ययम अविनाशी। व्यय का अर्थ क्या होता है? जैसे हम जन्म लेते ही हमारा शरीर ये अब सड़ने लगता है, गलने लगता है, मृत्यु की ओर जाने लगता है, तो विनाशी हैं हम। भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं अजन्मा हूं तो अपने आप में अविनाशी हो गया। अब यहां पर अचानक भगवान भूतानाम ईश्वरोपि सन क्यों कहे, ये जानने लायक बात है। कि अब देखिए कि कोई अपने बारे में कह रहा है, पर्सनल क्वालिटीज बोल रहा है अपने बारे में कि मैं ऐसे ऐसे हूं, अचानक वो अपना कनेक्शन, जैसे कि मान लो कोई कोई सीईओ है बहुत बड़े कंपनी का, अंबानी है, मिस्टर अंबानी, तो मिस्टर अंबानी अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सुंदर हूं, ये हूं, और अचानक बोल दे कि मैं 100 वर्करों का मालिक भी हूं। अचानक भाई ये 100 वर्करों का मालिक ये क्यों बोल दिया तुमने? कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ में आ रहा है ना। तो भगवान अपने व्यक्तिगत गुणों को बताते बताते अचानक बोल रहे हैं, हम लोग सब वर्कर इस संसार के, भगवान बोल रहे हैं मैं उनका मालिक भी हूं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। क्यों अचानक भगवान अजन्मा अविनाशी हमको क्यों इंक्लूड किया बीच में अचानक? अच्छे भले हम बैठे होते। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि कई दार्शनिक फिलोसोफर्स वो इस श्लोक पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई फिलोसोफर्स का कहना क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि वो जन्म लेते हैं, भगवान कहते हैं कि वो अवतरित होते हैं। अगला श्लोक कौन सा? यदा यदा ही धर्मस्य, 7th श्लोक। तो मायावादी फिलोसोफर्स इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि देखो वो बोलते हैं ना जन्म लेते हैं, वो कहते हैं कि वो आते हैं, तो वो जन्म लिए, वो आए, मैं भी जन्म लिया, मैं भी आया, मुझमें और उसमें क्या अंतर है? फिर भगवान यहां पर उनकी गाड़ी रोक देते हैं। मैं भूतानाम ईश्वर हूं, तुम हो नहीं, तो चुप रहो। अब कनेक्शन समझ में आ रहा है कि अचानक अजन्मा अविनाशी के बाद भूतानाम ईश्वर, कि कोई ये न कहे कि भाई मैं भी तो आत्मा हूं, मेरा भी तो जन्म नहीं होता। और हे भगवान, आप ही ने दूसरे अध्याय में कहा है मेरे आत्मा के बारे में, क्या कहा है? नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, कि ये आत्मा का न तो कोई नाश कर सकता है, कभी न होता है इसका नाश। तो आपने मेरे आत्मा के बारे में कह दिया तो मैं भी अजन्मा हुआ, और क्योंकि मैं जो आत्मा हूं और आप, हम दोनों में क्वालिटेटिवली कोई डिफरेंस नहीं है, है ना, तो मैं भी अविनाशी हो गया। तो फिर चलो साइड में हटो थोड़ा, मेरे मुझे बैठने दो। नहीं, भूतानाम ईश्वरोपि सन, यदि ये कोई हमें पूछे कि तुम जितने जीव भूत हैं उनके ईश्वर हो क्या? नहीं। तो इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से अजन्म, अविनाशी और भूतानाम ईश्वर, ये तीन उनके गुण क्यों बताएं? तो फिर भी यदि हम अजन्मा उसको पकड़कर रखें, लेकिन मैं भी तो अजन्मा हूं, तो उसके बारे में क्या कहना है? हां, तो उसके बारे में भी यदि हम गहराई से समझने जाएं तो अजन्मा भगवान जो अपने बारे में बोल रहे हैं और हम यदि अपने आप को अजन्मा कहें, उसमें भी अंतर है। कैसे? कोई कहेगा भाई भगवान के माता पिता का नाम क्या? वसुदेव देवकी, है ना। जैसे एक बार बंबई में गुरुकुल के बच्चों का मैं क्लास ले रहा था, हमारे मंदिर में गुरुकुल के बच्चे, तो अभी स्कूल में आदत होती ना, फॉर्म भरते हैं तो कैसे नाम लिखते हैं, फुल नेम बोला जाता तो कैसे लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं ना, कि राजू महादेव पोद्दार, तो बीच में किसका नाम आया? वो फादर का नाम आया ना। तो एक गुरुकुल के बच्चे को मैंने पूछा कि भगवान का नाम बताओ, तो उसने कहा कृष्ण वासुदेव यादव। सरनेम के साथ बीच में पिताजी का भी नाम लगा दिया। मैं पूछा श्रीमद भागवत किसने सुनाए? सुखदेव व्यासदेव गोस्वामी। तो कोई कह सकता है कि भाई जैसे राजू महादेव पोद्दार, वैसे कृष्ण वासुदेव यादव, क्या अंतर है मेरे में और उनमें? दोनों फॉर्म भरेंगे, ऐसे ही भरेंगे। जीवात्मा के विषय में बताया गया है कि उसके आत्मा और उसके शरीर में अंतर है। हमारा आत्मा और हमारा शरीर अलग है। हालांकि आत्मा अजन्मा है, परंतु क्योंकि ये आत्मा शरीर के अंदर बाधित है, कंडीशन्ड लिविंग एंटिटी बोल देते हैं, जिसके वजह से उस आत्मा को जो शरीर दुख भोग रहा है भोगना पड़ता है। जैसे कि एक उदाहरण प्रभुपाद ने, एक प्रभुपाद के शिष्य सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपको आती गाड़ी चलानी, परंतु यदि गाड़ी गड़बड़ है, कई गाड़ियां होती ना उसको बोलते हैं वॉबल्स, बहुत हिलती, थोड़ा फास्ट चला दो तो गाड़ी हिलती है, तो आप हिलना नहीं चाहते और आप बैठे हुए हो, सीट बेल्ट भी बांध के कष्ट लगा रखा है, लेकिन गाड़ी में ही गड़बड़ है तो आप कितना भी प्रयास करो आप अंदर हिलोगे। वैसे आत्मा इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, आत्मा को नहीं हिलने का, आत्मा को नहीं जाने का पिक्चर। लेकिन शरीर जाके बैठा है तो बेचारा आत्मा अभी क्या करे। तो वैसे ही जो जो ये शरीर करता रहता है आत्मा के विरुद्ध कार्य जो करता रहता है, तो आत्मा को वो सब उस दौर से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हम सीना ठोक के नहीं बोल सकते कि मैं अजन्मा हूं। हाँ, जब हम आध्यात्मिक संसार में पहुंचेंगे, हाँ, तब पूर्ण रूपेण हम कह सकते हैं कि हाँ मैं अजन्मा हूं। जैसे प्रभुपाद ये भी उदाहरण दिए, बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि मान लो मिस्टर अंबानी, पता नहीं उनका ही नाम क्यों आ रहा है, बिरला फॉर अ चेंज, तो उनको पूछो कि क्या आप धनवान हैं, क्या कहेंगे वो? हाँ भाई धनवान हूं। प्रभुपाद का ही गलत, क्योंकि वो पैसे वाले हो सकते हैं लेकिन सबका धन उनके पास नहीं है, पूरी सृष्टि में जितने धन है वो उनके पास नहीं है। हाँ जितना उन्होंने कमाया है, अभी जैसे हम पूछें कि आप लोग, आप भी कह सकते हो कि मैं भी धनवान हूं, जो मेरे पॉकेट में पैसा है, किसी के पॉकेट में 10 रुपया होगा तो वो 10 रुपयावान हो गया, किसी के पॉकेट में 100 रुपया हो गया तो 100 रुपयावान हो गया। परंतु यहां पर कोई भी नहीं कह सकता है कि जितने बैठे हुए हैं, जितने के पॉकेट में जितना धन है वो मेरा, पॉकेट मार बोलता है वो। तो वैसे ही यहां पर जब हम भगवान और जीवात्मा में अंतर, तो भगवान अजन्मा क्यों है? एक और कारण, क्योंकि भगवान का जो आत्मा है और भगवान का शरीर, ऐसे कोई अलग नहीं कि हाँ ये भगवान का शरीर है। यहां तक ब्रह्म संहिता में बताया गया है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, कि भगवान का जो विग्रह, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है, उसमें भगवान की जो इंद्रियां हैं इंटरचेंजेबल है, कि भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं, भगवान अपनी कोई भी इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर में, और उसको शरीर भी नहीं बोल सकते, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि विग्रह है भगवान, जो विशेष रूप से हमारे चित्त को ग्रहण करे वो है विग्रह। तो इसलिए आध्यात्मिक संसार में जब जीव पहुंचता है तब उसके शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं। अब बद्ध जीव का जो जन्म, पिछली बार हमने इसकी चर्चा की थी कि किन किन यातनाओं से बद्ध जीव उस जन्म की प्रक्रिया से गुजरता है, 9 महीने गर्भ के अंदर और फिर जब बाहर आता है तो प्रसव पीड़ा, और उसके पश्चात ऐसा नहीं कि अब बाहर आने के बाद उसका सच्चिदानंद विग्रह मिल गया है, अब बस आध्यात्मिक संसार में कूदा है वो, नहीं, फिर अलग प्रकार की समस्याएं प्रारंभ होती हैं उसकी। जैसे कि छोटा सा शिशु है, प्रभुपाद ये उदाहरण दिया था, छोटा सा शिशु है, रो रहा है, बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको अभी तक सीखा नहीं बोलना, तो एक ही भाषा केवल रोना, तो उसको अगर कोई मच्छर काट रहा है वो रो रहा है तो माता पिता को समझ में नहीं आता, दिख नहीं रहा है मच्छर और वो बोल नहीं पा रहा है कि इधर मच्छर बैठे इसको उड़ाओ, तो मां उसको दूध पिला देती, उसको नहीं पीना है, दस्त लगे हुए उसको दूध नहीं पीना, मां को लगता है कि भूखा है शायद, तो और रोने लगता है, और क्यों रो रहा है, तो जब समझ में नहीं आता तो यहां से उसकी परेशानियां शुरू होती हैं, कि जब उसको बोलना नहीं आ रहा तो व्यक्त नहीं कर पाता उसकी परेशानियों को, और जब आगे चलकर बोलना सीख लेता है तो बोल बोलकर दूसरों को परेशान करता है। इसलिए कहते हैं ना कि विरोधाभास क्या है इस संसार का, कि छोटे बच्चे जब बोलना सीखते नहीं तो उनको बोलो बोलो बेटा, मामा बोलो, पापा बोलो, बोलो बोलो बोलो, वो बेचारा क्यों जबरदस्ती मेरे को मामा मामा, फिर शुरू करता है बोलना बोलना, हाँ उसके बाद में फिर इतना बोलना शुरू, चुप नहीं बैठ सकता तू बेचारा, वो कंफ्यूज हो जाता है, बचपन में तो मेरे को सब मेरे इर्द गिर्द आके बोलो बोलो, अभी बोल रहा हूं तो बोलते चुप बैठो, तो जन्म से शुरुआत होती है श्रृंखला, किसकी श्रृंखला, यातनाओं की, पीड़ाओं की, परेशानियों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो प्रभुपाद के काफी अलग अलग कॉन्वर्सेशंस से मैं निकाल रहा था निचोड़ की हम लोग को अगला जन्म मिलता है, कारण क्या है उसका। सबसे पहला कारण है आत्मा को दूसरा शरीर प्रकृति देती है, जब ये शरीर जैसे कि ये यंत्र है, यंत्रारूढ़ानी माया, यंत्र जब काम कर बंद कर देता है ना, जैसे माइक्रोफोन काम करना बंद कर देता है तो फिर दूसरा लेना पड़ता है ना, वैसे ही ये शरीर जब काम करना बंद कर देता है तो प्रकृति को अब दूसरा नया शरीर देना पड़ता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, भगवान ने कहा है कि जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, जब वस्त्र सड़ जाते हैं, फट जाते हैं, उसके बाद अपने आप हमको दूसरे वस्त्र पहनने पड़ते हैं, बदलते हैं हम वस्त्र। तो डीके एंड डेथ ऑफ प्रेजेंट बॉडी इज वन रीजन दैट वी गेट अनदर फ्रेश बॉडी। सेकेंड रीजन, मटीरियल डिजायर्स फॉर्मिंग अ न्यू बॉडी। तो अब प्रश्न ये है कि ठीक है, ये मेरा जो वर्तमान शरीर है, वर्तमान शरीर बूढ़ा हो गया, वर्तमान शरीर मर रहा है या मर गया, तो अब अगला शरीर मुझे कौन सा मिलेगा, ये कौन निर्धारित करता है, हम ही निर्धारित करते हैं। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, जैसे कि एक आम का वृक्ष है, एक आम का वृक्ष है, उसमें इतने आम लगे हुए हैं और वो अब मरण स्थिति पर आ गया, बूढ़ा हो गया, मरने की स्थिति पर आ गया, तो वो आम का वृक्ष मरते मरते करता क्या है कि एक आम का बीज फेंक के मरता है, वहां से जंगल में ऐसे ही पेड़ उगते हैं, तो एक आम गया धरती के अंदर, उसके अंदर जो बीज है वहां से पौधा शुरू। तो जैसे यहां पर पिताजी मरे, बेटा पैदा हुआ, जैसे हमारे मनुष्य समाज में कैसे खानदान आगे बढ़ते हैं, वैसे तो ये उदाहरण दिया गया है कि ये शरीर हमारा जो है वो उस वृक्ष के समान है, आम के वृक्ष के समान है, और हमारी जो इच्छा, और तीसरा कारण भी हम साथ में लेते हैं कि जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो बीज के समान है। इच्छा से हम फिर उसको कार्य में लाते हैं, पहली इच्छा और फिर कार्य। ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगस्तेषु पजायते, पहले ध्यान करते हैं वो इच्छा होती है, फिर हम उसको कार्य में लाते हैं। तो ये उदाहरण है कि जैसे आम, आम का वृक्ष मरने से पहले बीज को धरती पर छोड़कर फिर मरता है, उसी प्रकार से ये शरीर मरने से पहले जो जो कर्म इसने किए हैं, जो जो इच्छाएं हमने पाली हैं, और उन पालती हुई इच्छाओं से जो जो कर्म हमने अच्छे बुरे किए हैं, हम हमारा अगला शरीर उसका स्केच अभी बना के देते हैं प्रकृति को। मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ना सुअर का चाहिए, अच्छा लगता है मुझे। तो हमारा अगला शरीर उसका पूरा जो क्या फ्रेमवर्क कौन कर, हम ही बनाकर देते हैं, हमें उसका ड्राफ्ट बनाकर फ्रेमवर्क बनाकर प्रकृति को देते हैं हमारी इच्छाओं के अनुसार। इसलिए ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये 84 लाख योनियां हैं क्या? ये 84 लाख इच्छाएं, सोचिए 84, हमने क्या क्या ऐसे ऐसे प्राणी, आपने कभी गिरगिट को देखा होगा। अब देखो गिरगिट, किसी आत्मा ने इच्छा की कि मुझे एक ऐसा शरीर मिलना चाहिए, रंग बदलते रहूं। कई लोग होते ना, मनुष्य जीवन में भी गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं। हाँ, तो जब ऐसे कर्म करते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं, तो प्रकृति कहती है कि भाई मनुष्य शरीर तो और किसी के लिए दिया था, तुम तो दल बदलू हो रहे हो। सुना आपने दल बदलू? तो दल बदलू तुम्हारा ये गुण है, तो उसके लिए प्रकृति के पास शरीर है, वो गिरगिट ये बनो। तो जिस पेड़ पे जाता है, जिस पत्ते के ऊपर, उस हिसाब से अपना रंग बदल। तो सोचो कितने ऐसे अलग अलग शरीर, गेंडा, हिप्पोपोटामस। अब देखो किसी ने क्या सोच विचार कर अपने कर्मों को और इच्छाओं का समन्वय कर वो शरीर प्रकृति को एप्लीकेशन डाला कि ऐसा एक शरीर बनाओ मेरे लिए। सुअर खाता रहूं गटर में, मजा आता है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, और वो भी क्या खाता रहूं। तो यहां पर ये जो 3 कारण बताए गए हैं, प्रभुपाद ने अलग अलग जगहों पर ये कारण दिए हैं कि हमारा जो अगला जन्म है उसका कारण क्या है। और भगवान, अब देखो हम अगर अपने आप को भगवान से तुलना करें, तो भगवान जब अलग अलग अवतार में आते हैं तो भगवान ये कारणों की वजह से नहीं आते हैं। उसकी चर्चा हम जो आने वाले श्लोक हैं उनमें करने वाले हैं, परंतु हमारे विषय में ये बताया गया ताकि हम इस भ्रम में न रहें कि मैं भी तो अजन्मा हूं, मैं भी तो अविनाशी हूं। नहीं 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 नहीं, जमीन आसमान का अंतर है यहां पर। भगवान जो अपने विषय में बोल रहे हैं और हम इन दोनों में। तो हमने ये स्लाइड पिछली बार भी लिया था। तो यहां पर भगवान एवं जीव में अंतर, जीव परिवर्तनशील, भगवान अपरिवर्तनशील, इसलिए विस्मृति और भगवान की पूर्ण स्मृति। तो इसे ये समझ में आ रहा है कि ये कह सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है कि भगवान यदि जन्म लेते हैं तो भगवान अपरिवर्तनशील कैसे हो गए? और शास्त्रों में तो यह भी बताया गया है कि भगवान की कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था सब कुछ बताया गया। 5 साल के भगवान कुमार अवस्था में, फिर 5 साल के पश्चात पौगंड अवस्था में, 10 साल के पश्चात किशोर अवस्था में। तो तो उसमें भी तो परिवर्तन हो रहा है भगवान के अंदर।
अष्ट
हर लीला जो भगवान की होती है उसमें भी परिवर्तन दिखता है। तो फिर भगवान की पूर्ण स्मृति कैसे बनी हुई है, उनका भी तो परिवर्तन दिखता है, उनका भी तो जन्म आप बोल रहे हो, विरोधाभास। तो तुरंत जो शक्की दिमाग है वो क्या कह देता है, ये आपके भगवान के अंदर विरोधाभास है, क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। और हां, भगवान के अलग अलग परिभाषाओं में से एक परिभाषा भगवान की क्या है, वन हु कैन रिजॉल्व कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन हिमसेल्फ। तो ये जो हमने स्लाइड पिछली बार भी ली थी कि अनेक जन्म होने के बावजूद पूर्ण स्मरण भगवान, तो क्या क्वालिटी, इसके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। अकोमोडेटिंग ऑपोजिट्स, ये है भगवान का एक बहुत विशेष गुण, जो कि इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि ऑपोजिट्स अनुभव करते हैं, परंतु यदि ध्यान से अगर हम उनसे सीखे नहीं तो हमको उसके अंदर विरोधाभास लगेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ये टेक्निकल रहेगा। भगवान के गुणों एवं लीलाओं में विरोधाभास, वहां से हम शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत करने से पहले आज के श्लोक में आपका प्रश्न ये होगा कि क्यों आज के श्लोक से ये पॉइंट लिया गया है, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने अपिसन ये दो शब्दों को दो बार भगवान ने कहा है, अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, दो बार अपिसन। तो अपिसन का अर्थ क्या है, ऐसा होने के बावजूद भी, मतलब मैं अजन्मा होने के बावजूद भी जन्म लेता हूं, मैं अपरिवर्तनशील होने के बावजूद भी परिवर्तन का अनुभव करता हूं। तो अपिसन यहां पर भगवान के विरोधी गुण को सामने प्रस्तुत कर रहा है, एक ही पर्सनैलिटी के अंदर विरोधी गुण। तो इसको समझने से पहले हम ये दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को लेंगे, फिलोसॉफिकल पॉइंट को, लर्निंग फ्रॉम ऑपोजिट्स। जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह आजकल वो लोग मैटर और एंटी मैटर, तो क्या हुआ यहां पर कि ऑपोजिट्स जो हैं अपने आप में जिनका विरोध है, परंतु विरोध होने के बावजूद उनके अंदर एक शिक्षा है जिसका समन्वय है। ऑल्दो देयर इज ऑपोजिट बट स्टिल विद इन ऑपोजिट देयर आर लेसन्स विच इज कॉमन। अब यदि मैं आप लोगों को पूछूं कि हमारा शरीर यदि हम लें तो क्या हमारे शरीर के अंदर विरोधाभास दिखता है आपको, शरीर के अंदर विरोधाभास है क्या? कंफ्यूज हो गए आप लोग, है ना, यही शरीर जगता है यही शरीर सोता है, दोनों में विरोधाभास है ना, जगना सोना, कई बार लेक्चर में एक साथ दोनों होता है। अगर हम ऑपोजिट्स अपने जिंदगी के लें, शरीर से संबंधित या और किसी से संबंधित, तो देखिए क्या क्या ऑपोजिट्स हैं, अर्निंग स्पेंडिंग, कमा रहे कमा रहे कमा रहे, फिर बाद में जाके खर्चा कर रहे खर्चा कर रहे खर्चा कर रहे, तो कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, कि भाई तू कमा क्यों रहा है, तो इतना मेहनत करके कमाता है और फिर सैटरडे संडे जाके उसको सब गंवा के आ जाता है। तो बोले कमा क्यों, उसलिए तो कमा रहा हूं, उसको खर्चा करने के लिए तो कमा रहा हूं। तो बाल बुद्धि, इसको शास्त्र में कहते हैं कि बाल बुद्धि जो होती है, बाल बुद्धि समझ नहीं पाती कि विरोधाभास में समन्वय क्या है। जैसे हमारे यहां पे एक पीछे जॉगिंग ट्रैक है, तो अक्सर शाम को कुछ एक्स्ट्रा माला करने के लिए मैं वहां पर जाता हूं। तो मैं कुछ दिन पहले वहां पर गया था, तो एक छोटी सी लड़की वो मुझसे मेरे साथ साथ चलते हुए मेरे से बात कर रही थी, छोटी सी, मेरे ख्याल से कुछ 2-2.5 साल की होगी, नहीं उससे थोड़ी बड़ी होगी, बात कर रही थी। तो मैं जब कहा तो मेरे को कहती है आपका नाम मैं जानती हूं। मैंने कहा क्या नाम है मेरा? प्रभु जी। मतलब क्यों, आपको कैसे पता? सब लोग आपको प्रभु जी बुलाते हैं ना, आपका नाम प्रभु जी है। मैंने आप कहाँ रहते हैं? घर में। कितना डायरेक्ट आंसर्स दे रही थी वो। तो मेरे को बोलती है मैं बुधवार को आपको देखती हूँ। अच्छा हाँ, वो सब बैठे रहते हैं, आप खड़े रहते हैं खाली। अच्छा अच्छा, तो फिर बोलती है मैं जानती हूं आप क्यों खड़े रहते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि आपको कुर्सी नहीं मिलती। वो आप देखो उसके दिमाग में ये था कि उसके दिमाग में कहां से आया। मैंने पूछा कि ये आपको किसने बताया? बोला घर पे मम्मी पापा बोलते रहते जल्दी चलो कुर्सी नहीं मिलेगी। तो उसका लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक लगा मुझे, जल्दी चलो मम्मी पापा बोलते हैं जल्दी चलो कुर्सी नहीं मिलेगी, तो वो लोग जल्दी आ जाते हैं, आप लेट आते हो इसलिए आपको कुर्सी नहीं मिलती। बोला हाँ, इसलिए मैं खड़ा रहता हूं। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जब विरोधाभास हमको समझ में नहीं आए तो शास्त्र कहते हैं वो बाल बुद्धि है। जैसे हमने कहा सोना जगना, स्लीपिंग बीइंग अवेक, ईटिंग इवैक्यूएटिंग, खाना और फिर उसको विसर्जित करना, अपोजिट है। एक टीचर ने एक स्टूडेंट को उठाया, बायोलॉजी टीचर, स्टूडेंट को पूछती है बेटा सबको बताओ डाइजेशन का प्रोसेस जो सिखाया था, हाउ डाइजेशन वर्क्स इन फ्यू वर्ड्स, एक्सप्लेन हाउ डाइजेशन वर्क्स। वो डरा हुआ वो लड़का खड़ा हुआ, इट स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड एंड्स विद लेफ्ट हैंड। बड़ा कंसाइज डेफिनेशन दिया डाइजेशन का उन्होंने। तो हमारे अंदर विरोधाभास, भोग त्याग, एक ही घर के अंदर भोग त्याग होता है ना, किचन और टॉयलेट ऑपोजिट है, किचन से भोग मिलता रहता है, टॉयलेट में त्यागते रहते हैं। तो मैटर एंटी मैटर, तो वैसे ही सच्चिदानंद जो आत्मा है, और भगवान को भी सच्चिदानंद कहा गया है, तो सत चित आनंद, ब्लिस एटर्नैलिटी एंड बीइंग कॉन्शियस। तो इसका विपरीत भी है, असत अचित निरानंद, मिजरी टेम्पररी नेचर एंड बीइंग अनकॉन्शियस। तो इन दोनों से हमको सीखना है, क्या सीखना है कि कहां नहीं अटकना और कहां जाना, दोनों से हमको सीखना है। तो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान ने इन दोनों के विरोधाभास के विषय में 15वें अध्याय की जो शुरुआत, पहला श्लोक जिसके अंदर भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, कि एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर जा रही हैं और शाखाएं नीचे की ओर, रूट्स आर गोइंग अपवर्ड्स ब्रांचेस आर गोइंग डाउन, और ये कहां दिखता है, प्रतिबिंब में। तो ऑपोजिट नेचर भगवान बता रहे हैं, लर्निंग फ्रॉम ऑपोजिट्स इस श्लोक के द्वारा और इस अश्वत्थ वृक्ष के उदाहरण के द्वारा, प्रतिबिंबित अश्वत्थ वृक्ष के उदाहरण से भगवान समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से उसका जो पर्पोट है उसमें एक्सप्लेन किया है कि वो जो भौतिक संसार है वो बिल्कुल विपरीत है आध्यात्मिक संसार के, ऑपोजिट है, उसमें विरोधाभास है। और उसकी शुरुआत कहां से होती है, प्रतिबिंब की शुरुआत होती है जल, यदि उस सरोवर में जल ही नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं आएगा। तो जल क्या है, डिजायर, हमारी इच्छा। तो जो गीता में भगवान ने कहा इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तो यहां पर डिजायर जो डिजायर के वजह से फिर सृष्टि की रचना होती है, ब्रह्मा जी वहां पर अगर आपको दिख रहे हैं, और फिर अलग अलग प्रकार के छंदांसी वेद परणानी, अलग अलग जो उसके टहनियां हैं, ट्विग्स लीव्स, वो उनके सब का विश्लेषण कर कर दिया हुआ है कि इस भौतिक संसार में हम कैसे इस उल्टे अश्वत्थ वृक्ष में फंसे हो। अब करना क्या है, हमको केवल सीधे अश्वत्थ वृक्ष में जाना। तो भगवान के कुछ विरोधी गुण हम पहले लेंगे। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि भगवान में विरोधी गुण, ये तथाकथित विरोधी गुण है। जैसे हमारे शरीर का हमने एग्जाम्पल दिया कि हमारे शरीर के लिए दोनों जरूरी है, सोना जरूरी है, जगे रहना जरूरी है, खाना जरूरी है, उसको विसर्जित करना जरूरी है, ये ऑपोजिट्स हमारे अंदर जरूरी है। तो भगवान के अंदर ये स्पिरिचुअली ट्रांसेंडेंटली प्योरली ये मैनिफेस्टेड है। अजन्मा होने के बावजूद भी जन्म लेते हैं, ये हमारे दो श्लोकों से इसका संबंध। फिर असंख्य जन्मों के बावजूद भी पूर्ण स्मृति, ये भी दो कॉन्ट्रेडिक्टरी चीजें हैं, परंतु भगवान उसको रिजॉल्व करते हैं अपने अंदर। ये हम लोग जो एक एक गुण ले रहे हैं, स्पेशली ऐसे गुण ले रहे हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, ये इसलिए ले रहे हैं ताकि हम समझ जाएं कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस इस स्तर पर केवल भगवान ही रिजॉल्व कर सकते और कोई नहीं। अचलेश्वर के बावजूद सर्वव्यापी, अचलेश्वर अर्थात भगवान का एक नाम है जो अपने धाम को कभी छोड़ते नहीं, अचल रहते हैं अपने धाम में। और भगवान का धाम उसका भी एक नाम है अचल, और जो अचल के ईश्वर हैं अचलेश्वर, वो वहां पर स्थित होते हुए भी सर्वव्यापी हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, उपनिषद में कहा गया है कि वही एक भगवान फिर कैसे सब जगह अपनी शक्तियों के द्वारा वो व्याप्त है। श्याम होने के बावजूद भी सुंदर, श्याम अर्थात श्याम वर्ण। तो भगवान, एक बार एक व्यक्ति मुझे पूछ रहे थे कि ये भगवान सांवले क्यों है, तो एक उसका उत्तर ये है कि इस भौतिक संसार में सांवला होना सुंदरता की निशानी नहीं बताई जाती, तो भगवान उसको डिफाई करने के लिए आए कि मैं सांवला बनकर सुंदर होकर दिखाऊंगा। वो काला एक बांसुरी वाला, तो भगवान सांवला होकर सुंदर हैं, इसलिए उनका एक नाम है श्याम सुंदर। तो जो भी हमको इस भौतिक संसार में विरोधी भाव लगते हैं और हमको लगता है कि नहीं, ये विरोधी भाव के वजह से संभव नहीं है, भगवान उसको संभव कर कर दिखाते हैं। वैकुंठ पति होने के बावजूद वनचारी, अब वैकुंठ पति सारे जितने वैकुंठ के धाम हैं, केवल एक वैकुंठ धाम नहीं है, अनगिनत वैकुंठ धाम है, उनके पति, उनके पालन करने वाले, उनके ओनर, वो जब आते हैं कृष्ण के रूप में तो वनचारी बनते हैं, वन में विचरण करने वाले, नंगे पैर घूम रहे हैं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई पॉकेट मनी नहीं है, कोई आभूषण नहीं, केवल जंगली फूल ले लेकर, मिनरल्स ले लेकर उनसे अपने आप को आभूषित करते हैं, वनचारी। अब हम भगवान की कुछ विरोधी लीलाएं लेंगे, तो ये तो गुण हो गए। अब भगवान ने ऐसी ऐसी कुछ लीलाएं की जिसके अंदर विरोधाभास, परंतु केवल भगवान ही उन विरोधाभास में समन्वय कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक पत्नी व्रत जिन्होंने लिया, वही राम द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आए और 16108 तो इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे पिछले अवतार में तो इतने स्ट्रिक्ट थे, अब इस अवतार में इतने। तो हां, वही भगवान श्री राम, वही हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान अपने, जैसे कि रामचंद्र जी की लीलाओं को आप रामायण में पढ़ो तो एकदम हर चीज उनके एकदम स्ट्रिक्ट और टू द पॉइंट, कोई भी नटखटपना नहीं, डिसिप्लिन, आइडियलिस्टिक, सब कुछ ऐसा। और भगवान श्री कृष्ण पैदा होते ही 6 दिन के थे, पुतना खत्म। और फिर भगवान की जो नटखट लीलाएं, गोपियों के घर जा जाकर उनकी मटकी फोड़ देना, ये चुरा लेना, वो चुरा लेना, बछड़ों को छोड़ देना गाय के पीछे, झूठ बोलना, रामचंद्र जी की लीला में आप बिल्कुल नहीं सुनोगे। रामचंद्र जी की अयोध्या में मक्खन चोरी कर रहे हैं भाग भाग के, कभी सुना? तो ये दोनों पर्सनैलिटीज भगवान एक ही हैं और प्रदर्शित करते हैं हाउ ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस कैन बी रिजॉल्व इन द सुप्रीम एब्सोल्यूट। गोपियों के वस्त्रों का हरण किया और द्रौपदी को अनगिनत साड़ी, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उसको रिजॉल्व किया। गोवर्धन धारण किया और पीढ़ा न उठा पाए। पीढ़ा आप लोग समझते हैं किसे कहते हैं? एक लीला है भगवान की कि भगवान छोटे से थे और गोपियां भगवान के साथ रोज आती थीं। भगवान अब रेंगना शुरू किए, चलना शुरू किए, यहां वहां दौड़ रहे हैं थोड़ा, तो वो सब देखने के लिए आती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था, इतने सुंदर दिखने वाले, कैसे भागेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो गोपियां आती थी, तो गोपियां छोटे से भगवान श्री कृष्ण को पूछती हैं, कान्हा बताओ तुम्हारी आंखें कहाँ हैं, तो ऐसे बताते थे आंखें। कान्हा बताओ तुम्हारा नाक कहाँ है, बता ये नाक। कान्हा बताओ तुम्हारे दांत कहाँ हैं, तो आए नहीं अभी तक। इनमें मजा आता था उन गोपियों। फिर एक गोपी ने भगवान से कहा, कान्हा वो पीढ़ा उठा, पीढ़ा पहले मैं बता देता हूं क्या होता है। गांव में एक वो जो ये होता है ना स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का बना हुआ एक स्टूल जैसा बैठने के लिए, चौरंगी, चौरंग, ठीक है, तो गांव का स्टूल छोटा सा, तो गोपियां बोलती थी कान्हा वो पीढ़ा कर लाओ। तो वही जिन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली में सुमेरु से भी बड़े पर्वत गोवर्धन को धारण किया, 7 दिन 7 रात वो पीढ़ा वाले निमित्त से नहीं उठता गोपियों को आनंद देने के लिए। तो यहां पर वही भगवान गोवर्धन जो धारण किए एक छोटा सा पीढ़ा नहीं उठा पा रहे थे। ये भी नहीं, जब नंद महाराज के जूते वो अपने सर पर लेकर रोज शाम को नंद महाराज आते तो छोटे से भगवान नंद महाराज के पादुका अपने सर पर लेकर नंद महाराज चौखट पर आते देने के लिए उनको, तो नंद महाराज की वो पादुकाएं उठाने के लिए इतना कष्ट उनको करना पड़ता अपने सर पर उठाने के लिए। और वही उन्होंने गोवर्धन कैसे धारण किया, जैसे कि एक हाथी एक कमल का पुष्प अपनी सूंड पर उठा लेता है। परम सत्य होकर यशोदा को झूठ बोलना। तो यहां पर यह बात समझ में आ रही कि ये केवल बाहरी रूप से विरोधाभास दिख रहा है, परम सत्य जो भी बोलते हो परम सत्य ही है। बाहरी रूप से हमको लगता है कि जब माता यशोदा पूछती कि तूने माखन की चोरी की, भगवान कहे नहीं, तो वो सत्य बोला उन्होंने, क्योंकि चोरी कौन करता है, चोर चोरी करता है, और चोरी की परिभाषा क्या है कि दूसरे का माल अपना, राम नाम जपना पराया माल, तो उसको कहते हैं चोरी, दूसरे का माल हड़प लेना बिना उसकी आज्ञा के। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई चोर तो बाकी हैं, माल तो सारा मिला है, सृष्टि करता कौन है, पूरी सृष्टि का माखन पैदा किसने किया, तो मैं ओनर हूं, तो बाकी लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं बिना मुझको पूछे वो चोर है। तो इसमें भगवान ने झूठ नहीं बोला, सच बोला। इसे भगवान मृत भक्षण लीला की माटी खाई भगवान। तो माता यशोदा पूछते हैं तूने माटी खाई, नहीं खाई, तो हमारे आचार्य उसका तात्पर्य देते हैं कि भगवान ने इसमें सच कहा, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, तो सर्वव्यापी के अंदर बाहर कुछ हो सकता है क्या। माता यशोदा ने प्रश्न क्या पूछा, तूने माटी उठा के अंदर खाई क्या, मैं सर्वव्यापी हूं, मेरा अंदर क्या बाहर क्या सब जगह व्याप्त, कोई बात नहीं कल समझ लेना। तो अब दामोदर लीला, हम खाली एक दामोदर लीला लेंगे, बहुत विशेष लीला जिसके अंदर भगवान ने 8 आश्चर्य और 8 प्रकार के विरोधाभास जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो दिखाया। तो सबसे पहले भगवान का एक गुण है, भगवान को एक नाम मिला हुआ आत्माराम। आत्माराम का अर्थ है कि जिन्हें बाहरी रूप से कोई भी वस्तु को अपने लिए प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो दामोदर लीला की शुरुआत होती है दिवाली के दिन, जब भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह भूखे, तमस्तन्य काम आसाद्य सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो कामना करने लगे माता यशोदा के दूध की। तो चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी में कहते हैं कि जो आत्माराम है उनको भूख कैसे लग सकती है, प्रेम के कारण। तो कौन सी भूख है, ये प्रेम की भूख है, वो दूध या मिठाई या माखन इसकी भूख नहीं, प्रेम की भूख। परंतु बाहरी दृष्टिकोण से विरोधाभास दिख रहा है। तो दामोदर लीला में भगवान ने ऐसे 8 विरोधी तत्वों को सामने रखकर देवताओं को दिखाया कि मैं जो तुम्हारे दृष्टिकोण में आत्माराम हूं, आप्तकाम हूं, लक्ष्मीपति हूं, त्रिगुणातीत हूं, ये सब कुछ हूं, मैं ये सब की तिलांजलि दे रहा हूं माता यशोदा का प्रेम प्राप्त करने के लिए, देख लो ये मेरी दामोदर लीला। तो सबसे पहला गुण भगवान का जो आत्माराम होने का, उसकी तिलांजलि दी भगवान ने भूखे बनकर। अब माता यशोदा ने अपने गोद में भगवान को बिठाया, भगवान ने माता यशोदा दही मथ रही थी, माखन निकाल रही थी, दिवाली का दिन उन्होंने कहा कि रोज चोरी करता है, आज मैं अपने हाथों से माखन निकाल कर खिलाऊंगी, सबसे उत्कृष्ट माखन। तो सुबह सुबह माता यशोदा वो कर रही थी मंथन का कार्य, भगवान मथनी को रोक देते हैं, माता यशोदा का आंचल खींचते हैं, मुझे दूध चाहिए। माता यशोदा दूध पिलाना शुरू करती है, कुछ समय के लिए दूध पिला रही है, फिर समझ में आता है कि रसोई घर में दूध जो उन्होंने उबलने के लिए रखा है वो बाहर आ रहा है, उबल रहा है, तो छोड़ देती है। अब भगवान का ये दूसरा गुण, भगवान है आप्तकाम। आप्तकाम भगवान को कहा गया है कि छोटा सा भोग भगवान को कोई चढ़ाता है तो भगवान उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने एक कर्ण खिला दिया अक्षय पात्र से, भगवान संतुष्ट हो गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान गीता में कहें। अब देखो माता यशोदा पूछती कि आप ही ने गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मैं तो कितने टाइम से तुमको दूध पिला रही थी, तो फिर तुम असंतुष्ट क्यों रहे? नहीं, भगवान कह रहे हैं गीता का श्लोक अर्जुन के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। एज फार एज यू आर कंसर्न मदर यशोदा, आई विल बी डिससैटिस्फाइड बिकॉज आई वॉन्ट योर लव मोर एंड मोर एंड मोर। तो आप्तकाम असंतुष्ट हुए। उतना ही नहीं, क्रोधित, केवल असंतुष्ट नहीं, क्रोध में उन्होंने मटका फोड़ा, पत्थर उठाकर मटका फोड़ा और भरा हुआ मटका माखन का सब जगह बिखेरा। उतना ही नहीं, माखन जा जाके बंदरों को खिलाया और क्रोध में यहां वहां भाग रहे। तो भगवान का एक नाम है त्रिगुणातीत, जो तीनों गुणों के परे हैं, वो भगवान क्रोधित हुए। क्रोध जो है वो रजोगुण और तमोगुण का लक्षण है। तो कोई कह सकता है कि ये आपके भगवान क्रोधित हो रहे हैं तो क्या रजोगुणी हो गए, क्या तमोगुणी हो गए? उनको तो त्रिगुणातीत कहा गया। नहीं, लेकिन माता यशोदा के लिए वो स्वीकार करते हैं कि चलेगा, चाहे दुनिया मुझे कहे कि अरे ये त्रिगुणातीत भगवान गुणों के अधीन आकर क्रोधित हो गए, भगवान कहते हैं मैं परवाह नहीं करता, मुझे तो माता यशोदा चाहिए। तो ये तीसरा विरोधाभास दामोदर लीला में दिखता है। अब अपने घर में चोरी कर रहे हैं कौन? ये लक्ष्मीपति। और कौन से लक्ष्मी के पति? सहस्त्र लक्ष्मियों के पति हैं, एक लक्ष्मी नहीं। हम लोग तो यहां पे लक्ष्मी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी देवी आपका 1% बैंक में से थोड़ा आ जाए। यहां पे एक लक्ष्मी नहीं, दो नहीं, सहस्त्र लक्ष्मियों के पति। सोचो कितना दहेज मिला होगा। वो चोरी किसी कर रहे हैं माखन की, तो यहां पर भी अपने घर में दिवाली के दिन माखन चोरी, अपने घर में चोरी, और वो भी माखन की। ऐसा नहीं कि तिजोरी में जाके कोई आईपैड चोरी किया या और कोई कॉस्टली आइटम चोरी किया, नहीं, माखन। तो यहां पर ये चौथा विरोधाभास। पांचवा विरोधाभास, मूर्तिमान भय को भी भयभीत करने वाले भगवान यशोदा से भयभीत हुए। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम करांभोज युगमेन सातनक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ सितग्रैवम दामोदरम भक्ति बद्धम। रो रहे कंपन उनकी जो तीन रेखाएं हैं गले में, वो रेखाएं ऐसे कंपित हो रही हैं जैसे कि मान लो मूर्तिमान भय सामने आ गया है भगवान के, और वो भगवान मद भयाद वाति वातो यम सूर्य स्तपति मद भयाद वर्षत इंद्रो दहत अग्निर मृत्युश्चरति मद भयाद। मृत्यु मूर्तिमान मृत्यु जो सबको भयभीत कर कर रखता है, वो थर थर कांपता है भगवान श्री कृष्ण के सामने। तो मूर्तिमान मृत्यु भगवान के सामने थर थर कांपता है, वो भगवान माता यशोदा की छड़ी के सामने थर थर कांप रहे। बोलो दामोदर भगवान की। तो ये है भगवान माता यशोदा का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने विरोधी भाव को दिखा रहे। महान योगियों द्वारा अगम्य भगवान यशोदा द्वारा पकड़े गए। बड़े बड़े योगी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इन योगियों के विषय में कहते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवान सोप्यस्ति यत् प्रपदसिन्म्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि ये योगी जो अपने मन के वेग पर चलकर, या चल मन का वेग क्या है, वो चलना तो नहीं हो सकता है, वो मन का वेग तो अगर एक ऐसा वाहन जिसका स्पीड है माइंड का स्पीड, माइंड का स्पीड क्या है, एक क्षण इधर आधे क्षण, उससे भी आधे क्षण इधर, उससे भी आधे क्षण कहीं और। तो ऐसे ऐसे योगी हैं जो माइंड की स्पीड के वाहन पर उड़ सकते हैं, परंतु वो भी प्रपद भगवान का जो प्रपद है, भगवान के पैरों के अंगूठे का नाखून, उसको प्रपद कहते हैं, उसको भी नहीं छू पाते हो उस स्पीड से भी, अगर वो भगवान को पकड़ना चाहें तो उनकी योग शक्ति से। और यहां माता यशोदा एक ग्वालन, एक साधारण सी ग्वालन भगवान को पकड़ लिया। मुक्ताय भगवान बद्धाय हो गए। कि भगवान जो उनको एक नाम मिला हुआ है, उनका एक नाम है मुक्ताय। जैसे गजेंद्र अपनी प्रार्थनाओं में वो कहते हैं, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। भगवान को बुलाते हैं कि आप मुक्ताय हो, हर समय आप परम मुक्त रहते हो। और उन्हीं को माता यशोदा ने बद्धाय कर दिया, मुक्ताय बद्धाय हो गए। और फाइनली भगवान का मुक्ताय के साथ एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है जो न केवल स्वयं मुक्त हैं बल्कि दूसरों को मुक्त कर देते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम मुकुंद। तो न केवल उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो दूसरों को मुक्त कर देते हैं, उनका केवल कोई स्मरण कर ले, उनका कोई नाम ले ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल नाम लेने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, उनका प्रसाद ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। वो मुकुंद अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि माता यशोदा का वो प्रेम का बंधन है। एवं संदर्शित ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यत स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं स ईश्वरं वशे। सुखदेव गोस्वामी दामोदर लीला के अंत में कहते हैं कि भगवान ने ये लीला की सारे देवताओं को, ईश्वरों को दिखाने के लिए कि कैसे मैं परमेश्वर मेरे भक्त यशोदा के अधीन आ जाता हूं। तो दामोदर लीला ये भगवान की अनगिनत लीलाओं में से एक लीला है जिसके अंदर भगवान ने इतने विरोधाभास दिखाए। कारण क्या था? माता यशोदा का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि भगवान यदि अपने अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस भी दिखाएं तो उसका प्रयोजन स्पिरिचुअल होता है। हमारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन कंफ्यूजिंग होता है। कोई व्यक्ति अभी ईमानदार है, कुछ साल बाद बेईमान बन जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मैंने इसको वोट दिया था। अभी कोई व्यक्ति प्रेम से आपसे बात कर रहा है, अच्छी से प्रेम से आपसे बात किए, बहुत से उसने कस्में खाई, आपने विवाह कर लिया, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अरे पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि संसार में कोई भी पहले जैसा नहीं रहने वाला है, समझ लो। तो विरोध या विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन इस संसार में कंफ्यूजिंग है, परंतु और क्या है, प्यूट्रिफाइंग, वो हमें और बांधता है इस संसार में। भगवान के अंदर वैरायटी या कॉन्ट्रडिक्शंस भगवान की लीलाओं को और एक्साइटिंग बनाता है। तो अब देखिए भगवान की जो एक दामोदर लीला है इसके अंदर भगवान ने जो एक्साइटमेंट डाल दिया, ये विरोधी गुणों के वजह से। अगर भगवान लक्ष्मीपति बनकर या आत्माराम बनकर सोए रहते, पूरे दिवाली के दिन सोए, मेरे को जरूरत ही नहीं, भूख ही नहीं लगती, तो क्या मजा आता उस लीला के अंदर। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे जो मायावादी ब्रह्मवादी हैं, कोई टेस्ट नहीं है ब्रह्म ज्योति में, बस कोई वैरायटी नहीं, कोई लीला नहीं, कोई नाम नहीं, कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं, तो क्या उसके अंदर किसी को टेस्ट आएगा। हॉस्पिटल के खाने के समान है, सब एक जैसे ही लगता है। अब ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, थोड़ा ध्यान से आप इसको सुनिएगा। यहां पर भगवान के पर्सनालिटी को मैंने दो सर्कल्स में डिवाइड किया, एक बड़ा वाला, कौन से कलर का है वो, नीले कलर का है, और उसके अंदर पीला सर्कल। तो भगवान के पूरे पर्सनालिटी को दो सर्कल्स में हमने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जो बड़ा वाला नीला सर्कल है उसको कहते हैं सर्कल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, और अंदर वाला जो सर्कल है उसको मैंने नाम दिया है सर्कल ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि हिंदी में और ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा आपको समझना। सर्कल ऑफ सब्जेक्टिविटी को व्यक्ति पूरक, नहीं समझे, व्यक्ति पूरक कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को विषय पूरक। तो ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है कि भगवान के गुण जो जन साधारण के लिए एक जैसे है, और सब्जेक्टिविटी का अर्थ है कि उसी ऑब्जेक्टिविटी के भगवान के रूप के अंदर भगवान अलग अलग जीवों के साथ व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हैं। अब ये जो विरोधाभास है ये एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल का विरोधाभास है जो केवल भगवान के अंदर ही पाया जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब्जेक्टिविटी इन ऑब्जेक्टिविटी। और एक सुंदर श्लोक है दशम स्कंद में इसके विषय में, यह श्लोक है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे हैं और कंस ने अब चाणूर और मुष्टिक ये दो मल्लों को लगाया है भगवान के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए, रेसलिंग। तो रेसलिंग एरिना में जहां पर मल्ल युद्ध अब होने वाला है चाणूर मुष्टिक के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रवेश करते हैं तो भगवान की जो एंट्री है उस रेसलिंग एरिना में, उस अखाड़े में, भगवान की एंट्री को जब वहां पर स्टेडियम में बैठे हुए अलग अलग व्यक्ति देखते हैं तो उनका सब्जेक्टिव रिएक्शन क्या रहता है। तो वह एक श्लोक है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव भगवान श्री कृष्ण सब्जेक्टिवली प्रतीत होते हैं जो जो स्टेडियम में बैठे हैं। सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी इन ऑब्जेक्टिविटी। तो यह श्लोक इस प्रकार से है, मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवर स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शाष्टा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराद विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गत साग्रज। The various groups of people in the arena regarded Krishna in different ways when he entered it with his elder brother. The wrestlers saw Krishna as lightning bolt. कौन? चाणूर मुष्टिक ने भगवान को किस प्रकार से देखा? बिजली। The men of Mathura as the best of males, कि जो पुरुष थे मथुरा के, उन्होंने देखा भगवान को कि पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं ये। द विमेन सॉ कृष्णा एज क्यूपिड, कामदेव की तरह भगवान दिख रहे थे स्त्रियों को। द काउहर्ड मेन एज देयर रिलेटिव, जो ग्वाल सा, वो से, अरे ग्वाल आ गया, हमारे तरह ग्वाल आ गया, वो ग्वाला बोल रहे थे भगवान, वही एक भगवान है। द इम्पायस रूलर्स एज अ चेस्टाइजर, तो जो ऐसे कुकर्मी राजा थे वो भगवान को देखे तो भगवान को देखकर उनको क्या प्रतीत हुआ कि ये दंडित करने के लिए व्यक्ति कोई आया है। द किंग ऑफ भोज कम्स व्हेन ही सॉ कृष्णा ही सॉ मेरी मृत्यु चल के आ रही है। तो देखो, स्त्रियों ने भगवान को कामदेव के रूप में, पुरुषों ने भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में, कंस ने मृत्यु के रूप में। द अनइंटेलिजेंट, जो बुद्धिहीन थे, उन्होंने भगवान को कैसे देखा? जैसे कि कोई विश्व रूप को मान लेता है, पूरी सृष्टि को भगवान मान लेता है, उस प्रकार से। तो जो योगी बैठे हुए थे स्टेडियम में, उन्होंने भगवान को किस प्रकार से देखा? ये हमारे परम तत्व जिसके ऊपर हम ध्यान वगैरह करते हैं, परम सत्य है। और जो वृष्णी वंशी वहां पर थे, उन्होंने भगवान को अपने आराध्य मूर्ति के रूप में देखा। तो इसे कहते हैं सब्जेक्टिविटी इन ऑब्जेक्टिविटी। तो भगवान देखो हर एक जीव को आकर्षित करने के लिए वही एक भगवान अपने विभिन्न रूपों में अवतरित होकर उनको आकर्षित करते हैं। और यदि हम इस भगवान के गुण को न समझ पाए तो हमको लगता है कि विरोधाभास है। अब भगवान ने आगे कहा, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति में स्थित होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं। तो भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, तटस्थ और बहिरंगा। तो अंतरंगा शक्ति जो भगवान की है, वो भगवान के स्वयं के आध्यात्मिक संसार की शक्ति, इंटरनल पोटेंशियल जिसको कहते हैं। बहिरंगा है भौतिक, ये जो संसार में भगवान की जो शक्ति व्याप्त है, जो हम सब के ऊपर नियंत्रण किए हुए, वो है एक्सटर्नल। और तटस्थ, जैसे कि तट होता है, समुद्र का तट, समुद्र का तट है, उसको आप ये भी नहीं कहोगे कि वो हर समय गीला रहता है, या हर समय सूखा रहता है? नहीं, तट का अर्थ है कभी गीला कभी सूखा। तो हम लोग कौन है? हम लोग तटस्थ है, बीच में, कभी गीतामृत कभी एमटीवी, कभी आस्था कभी एमटीवी, कभी आस्था कभी एमटीवी, ऐसे इसको कहते हैं तटस्थ। तो भगवान, हम लोग यहां पर हैं बहिरंगा शक्ति के वजह से, परंतु भगवान जो कह रहे हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय कि मैं आता हूं मेरी अंतरंगा शक्ति को लेकर। तो बहुत सुंदर उदाहरण इसके विषय में दिया गया है एक राजा का, कि राजा वो कहीं पर भी जाए वो राजसी ठाट बाट में ही जाता है। या यदि हम आज की भाषा में कहें कि मान लो बराक ओबामा, सब जानते हैं प्रेसिडेंट हमारे यूएसए का, तो बराक ओबामा अगर वो इंडिया में आना चाहे तो आपको क्या लगता है? जैसे वो बिल क्लिंटन आया था बंबई में, तो बिल क्लिंटन जब आया तो बिल क्लिंटन के लिए जो अरेंजमेंट्स बंबई में हुए थे उसके कुत्तों के लिए 5-star अरेंजमेंट हुए थे। सोचो, 5-star होटल में उसके कुत्तों के लिए अरेंजमेंट हुए थे, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट हुआ होगा? तो बिल क्लिंटन जब आया था तो सब जैसे कि उसको एक्सपीरियंस यूएस के अंदर जो भी होता है राजसी ठाट बाट का, वही यहां पर उसके लिए प्रेजेंट किया गया था। तो ये उदाहरण दिया गया है कि एक धनवान व्यक्ति, एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, वो चाहे गांव में चला जाए कहीं पर चला जाए, वो अपने ऐश्वर्य को लेकर जाता है और वहां पर रहेगा 5-star तरीके से। तो वैसे ही भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को लेकर आते हैं, वो बहिरंगा शक्ति के अधीन यहां पर नहीं जन्मते और फिर किसी मैटरनिटी रूम में और कोई नर्स कोई आया ही नहीं, साफ सफाई कुछ नहीं, म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल है, नहीं, उनका उनकी खुद की शक्ति को लेकर, अंतरंगा शक्ति को लेकर, जैसे कि एक राजा हर समय अपने एंटोराज, उसकी जो शक्तियां हैं वो उसके इर्द गिर्द रहती हैं और वो जन साधारण को छूने नहीं देते राजा को वो शक्तियां, वैसे ही भगवान की ये शक्तियां, विशेष रूप से अंतरंगा शक्ति। और फिर आत्म माया, अंतिम शब्द भगवान ने आज के श्लोक में कहा है आत्म माया, जिसका जिसके दो अर्थ हैं। आत्म माया के दो अर्थ क्या हैं? एक तो अहितु की कृपा, भगवान अहितु की कृपा के वजह से जन्म लेते हैं, और स्वतंत्र इच्छा के वजह से भगवान जन्म लेते हैं। और ये यहां से शुरुआत होता है जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है इस अध्याय का, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं अगले बुधवार को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। तो आत्म माया का कनेक्शन है अगले वाले श्लोक के साथ, इसलिए हम केवल ब्रीफली आपको समझा दिए कि उसके दो अर्थ क्या हैं। अब उसका विस्तार हम करेंगे अगले बुधवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको एक और खुश खबर हम देना चाहेंगे, हमारे राधा मदन गोपाल के परिवार में एडिशन हुआ है कली, बहुत सुंदर एडिशन हुआ है। और ऐसे होता है ना परिवार में एडिशन, किसको बोलते हैं, छोटा बच्चा पैदा होता है, नामकरण होता है, तो हमारा एडिशन हुआ है इनका। हमारे धवली ने बेबी बॉय, ये बछड़ा कल ही पैदा हुआ, आज इसकी एक्चुअल ये फोटो खींची गई सुबह, तो इसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं, तो हमने सोचा आज के बुधवार के कार्यक्रम में इसका नामकरण कर दें। तो इतना सुंदर ये कल ही पैदा हुआ, कुछ घंटों में पैदा होते ही ये घूमना फिरना शुरू किया। भगवान की देखो प्रकृति की देन क्या है कि खुद ही हम लोग ब्रह्मचारी बता रहे थे कि वो केवल खड़े थे, खुद ही बछड़ा अपने आप नेचुरली पैदा हुआ। हमारी जो धवली है उन्होंने पूरा उसको साफ किया और बस आधे घंटे में उठकर दूध पीना शुरू कर दिया। मनुष्य के बच्चे को कितना टाइम उसको पालने में, पालने से यहाँ वहाँ, फिर उसको इतना वो पकड़ पकड़ के झूले से, फिर चलो भैया एक कदम लो, दो कदम लो, तीन कदम लो, उसके बाद भी उसको कुछ समझ में आता नहीं। यहाँ पर ये बछड़ा कुछ घंटे में खड़े होके इतना सुंदर, तो ये हमारी धवली का न्यू बॉर्न बेबी काफ बॉय, और ये हमारी श्यामली। श्यामली का छोटा भाई। तो हमने सोचा कि राधानाथ महाराज उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा था कि जो पहला बैल न्यू वृंदावन में पैदा हुआ था उसका नाम था, तो हम सोचे कि राधानाथ महाराज ने जो नाम वहां पर हमको उस लेक्चर में बताया था तो वही नाम इसका हम रखें। तो अभी धवली श्यामली और धवली श्यामली का ऋषभ। जय मदन गोपाल भगवान की जय।